శాంతి. జ్వాలా స్వరూప్ యోగాభ్యాస్ కి అనుమతి. వర్తమాన్ సమయ జ్వాలా స్వరూప్ యోగ కి అనుమతి కన్నా అతి ఆవశ్యక హే. క్యోంకి పెహ్లీ బాత్ హే, హమారి జో 63 జన్మో కే కఠోర సంస్కార హే, ఉన్ సంస్కారో కో పరివర్తన్ కర్నా, అర్థాత్ ఆత్మా మే జో వికారో కే అంశ హే ఉన్కో భస్మ కర్నా. దూసరీ బాత్ హే, హమారే సిర్ పర్ జో 63 జన్మో కా పాపో కా బోజ్ హే, ఉస్కో ఉతార్నా. ఔర్ తీసరీ బాత్ హే, ఆనే వాలే సమయ మే హమే అనేక ఆత్మాఓ కో మనసా కే ద్వారా శక్తియో కా దాన్ దేనా హోగా. उसके लिए शक्तियों का स्टॉक जमा करना जरूरी है. ये सभी बातें साधारण योगाभ्यास से संभव नहीं है. इसलिए प्यारे बाबा का भी इशारा है, अब इस समय के अनुसार జ్వాలా స్వరూప్ యోగాభ్యాస్ బాతి చలో. బ్రాహ్మణ జీవన మే ఐసీ ఉచ్చ కోటి కీ సాధనా కర్నే కే లియే ఆవశ్యకతా హే ఇస్ పురాణి దునియా సే బేహద్ కా వైరాగ్య అనుభవ కర్నా. క్యోంకి जब तक हमारी बुद्धि एक तरफ से नहीं हटती है, दूसरे तरफ नहीं जुटती है. इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते हुए, अपना सब कारोबार संभालते हुए, हमें ऐसा अनुभव करना है कि अभी परमधाम रूपी घर वापस जाने का समय है. मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैं अभी रिटर्न जर्नी पर हूं. ऐसा आवाज हमें सदा सुनाई दे, क्योंकि जितना हम इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा बनते जाते हैं, उतना उतना एक बाबा की स्मृति में टिकने लगते हैं. तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा. उन 5 बातों पर अगर हम दिल से अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी. पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करते रहना. एकांत में बैठकर हमें विधि पूर्वक आत्म अनुभूति करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा का दर्शन करना है और आत्मा के जो सातों गुण हैं उसके अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी और उस स्थिति में स्थित होने का समय भी बढ़ता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी गहन आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति हर कल्प अच्छी तरह से की है, उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं कि पांडव जब पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके साथ कुत्ता था, कुत्ता माना हमेशा पूंछ हिलाने वाला। तो जैसे जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते गए कुत्ता गायब हो गया, जैसे जैसे वो चढ़ते गए गलते गए और बाद में पता नहीं कहां गायब हो गए। ये अभी संगम युग का हमारा गायन है। जो पांडव हम सभी प्रीत बुद्धि बैठे हैं यहां, पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति की अनुभूति करने के लिए जब हम अभ्यास करते हैं तो आत्मा की पूंछ है ये देह, ये गायब हो जाती है, इसको हम भूल जाते हैं। और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, गलते जाते हैं, माना 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में है वो भी धीरे धीरे हटते जाता है। और जैसे जैसे ऊंची स्थिति पर जाते हैं वैसे वैसे गायब हो जाते, माना परम धाम में अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसा अभ्यास हमने हर कल्प किया है, केवल हमें उसको रिपीट करना है। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात जब भी हम बैठक का योग करते हैं उस समय स्वयं को केवल साधारण आत्मा न समझें, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसी बैठक में जब बैठते हैं तो परमात्मा जो सर्वशक्तियों के सागर हैं उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति हम करने लगते हैं। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में हमें बाबा के सामने बैठना है और बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को देखना है। गहराई से माना बहुत समीप बाबा के बैठकर बाबा के स्वरूप को देखें, आखिर भी बाबा की पर्सनैलिटी स्वरूप कैसा है, बाबा का मन कितना शुद्ध है, श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करता रहता है, बुद्धि कितनी विशाल है, कितनी दूरंदेशी है और संस्कार भी कितने रॉयल हैं, कितनी गजब की पर्सनैलिटी बाबा की है, ऐसे बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को हमें देखना है। और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात आप सोच सकते हैं जिसके इशारे पर यह सारा संसार चल रहा है, जिसके पास सारे संसार की रचना का ज्ञान है, जो सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करता है, वो कितना पावरफुल होगा, कितनी वो पावरफुल हस्ती होगी, आप सोच सकते हैं। हमने बाबा कहकर उसको साधारण समझा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे पिता हैं। तो ऐसे शक्तिशाली स्वरूप को हमें बुद्धि से देखना है। अर्जुन को जब साक्षात्कार परमात्मा का हो रहा था, अर्जुन ने वर्णन किया परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, कुछ तो अनुभव किया होगा, तभी तो ऐसा वर्णन किया। तो परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में नहीं है, लेकिन शक्तिशाली जरूर है। ये जो दुनिया का सूर्य है, इस सूर्य की रोशनी में मई जून के मास में आप एक मिनट नहीं खड़ा हो सकते हैं। जब खड़ा होंगे तो मुख से निकलता है मेरा बदन जल रहा है। जलने के शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इतनी उष्णता उसकी है जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस सूर्य का भी वो बाप है। ऐसे सूर्य वो कितने पैदा कर सकता है, उतनी क्षमता उसके पास है। तो कहने का भाव है बाबा का बहुत शक्तिशाली स्वरूप ज्ञान सूर्य के रूप में बहुत समीपता से हमें देखना है और अनुभव भी करना है, तभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव हमें हो सकता है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि हमेशा ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूमती रहे, क्योंकि विशेष योगाभ्यास में इन दो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जैसी स्थिति मन और बुद्धि की होती है, उसके आधार पर हमें योग की अनुभूति होती है। इसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। बाबा ने हमें जो स्वमान के टाइटल दिए हैं, वो हमें उन्नति के लिए दिए हैं। स्वमान का टाइटल रूपी टाई हमेशा हमें पहनकर ही कर्म क्षेत्र पर जाना है। जब आत्मा के साथ स्वमान का टाइटल जोड़ते हैं तो हम न चाहते हुए नशे में झूमने लगते हैं। जैसे लौकिक में डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो बचपन से ही डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ता है और अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसके दिल दिमाग में वो बैठ जाता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये लौकिक स्वमान है। तो आत्मा का स्वमान अलौकिक है। जब तक स्वमान धारी हम नहीं बन सकते हैं, तब तक मन और बुद्धि हमारी नशे का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हम बहुत महान आत्माएं बैठे हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर सम्मान के टाइटल दिए हैं। जो भी टाइटल हमें खुशी दिलाता है, ईश्वरीय नशा का अनुभव कराता है, वो एक या दो टाइटल हमें सिलेक्ट करना है और उस पर बहुत अच्छी तरह से गहराई से मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करके उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। और जब हम समान में स्थित होते हैं तो कर्म करते भी हमें ईश्वरीय नशे में झूमते रहते। बाबा जैसे कहते, हाथ काटे दिल यारे, हाथ से काम करते हुए भी दिल उस यार के पास अर्थात बाबा के पास स्वतः ही जाता है, क्योंकि समान के अभ्यास से मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की अनुभव करती है। पर ऐसी हल्की मन और बुद्धि न चाहते हुए बलून की तरह ऊपर जाती है और बाबा के पास हमें बिठा देती है। और बहुत सुंदर गहन योगाभ्यास के अनुभव हमें कराती है। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। जब हम मस्ती में मस्त रहते हैं तो इस पुरानी दुनिया से हमारा मन हट जाता है। हम अपने अलौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद अगर हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है सदा समानधारी होकर रहना। क्योंकि हम देखते हैं बाबा के सेवा केंद्र पर हम जाते हैं तो हम बहुत खुशी में झूमते हैं, मुरली सुनते हैं, नशा अनुभव होता है। लेकिन जैसे सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं हमारा नशा धीरे 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 कम होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? माली जो ऊपर से आता है इस बगीचे को सींचता है ज्ञान और योग के जल से, हर रोज सींचता है। वो माली चाहता है मेरे बगीचे का हरेक रोहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो, तो हमेशा ऐसा खिला हुआ क्यों नहीं रहता है रोहे गुलाब? टेम्पररी हमें नशा चढ़ता जरूर है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उस कारण को जानना जरूरी है तभी उसका हम निवारण कर सकते हैं। कारण बहुत सिंपल है। जो भी यहां बैठे हैं बहुत महान आत्माएं, राजे महाराजे होनहार बनने वाले हैं, साधारण रूप में बैठे हैं, लेकिन सतयुग में बहुत ऊंचा स्टेटस हमें मिलने वाला है। तो हम सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे थे, रानी महारानियां थी, बहुत ऊंचा स्टेटस था। लेकिन जैसे द्वापर युग में प्रवेश किया, माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 वर्षों तक माया के गुलाम हम बनकर रहे। अंग्रेजों की गुलामी केवल 150 साल की थी, माया की गुलामी 2500 वर्षों तक रही। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है, उसको हमें हटाना जरूरी है। इसलिए द्वापर कलयुग को हमें नहीं देखना है, हमें सतयुग त्रेतायुग के पार्ट को देखना है। हम ही वो महान विभूतियां हैं हम ही वो होनहार राजे महाराजे हैं, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सदा सोमानधारी होकर रहेंगे और ईश्वरीय नशा हमारा नेचुरल रहने लगेगा। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए चौथी बात है, हमारे दिल में सदा परमात्म प्यार का झरना बहता ही रहे। दिल में हमेशा परमात्म प्यार भरपूर हो, क्योंकि जैसे सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, मुट्ठी चावल था बचा हुआ, इससे हमारे पास भी कुछ नहीं है, केवल दिल के सच्चे प्यार की थोड़ी पूंजी है। उस अमूल्य पूंजी को हमें परमात्मा को सौंपना है। प्यार के सागर के बच्चे होने के कारण सबके साथ प्यार से रहना जरूर है, संबंधों को निभाना जरूर है, लेकिन सच्चा प्यार दिल का प्यार केवल उस एक के साथ ही हो। हमें चेक करना है, बुद्धि बार बार कहीं मेरी जाती तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु जहां बार बार मेरी बुद्धि जाती तो नहीं है, वो हमें चेक करना है और वहां से बुद्धि को हटाना है और बाबा के तरफ उसको जुटाना है। क्योंकि 84 जन्मों का पाठ बजा कर हम अभी बैठे हैं लास्ट जन्म में। कई आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव अकाउंट है, नेगेटिव भी अकाउंट है, उस सभी हिसाब किताब को हमें घर जाने के पहले पूरा करना है। उसके लिए अगर थोड़ा प्यार किसी के तरफ हमारा जाता भी है तो उसको वहां से हटाकर बाबा के साथ जुटाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का पक्का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बेघर तो हो, बेघर माना बेघर, एक किराए का मकान लेके तो बैठे हो, क्या है आपके पास? तो मैं केवल प्यार का सौदा करने आया हूं। करोगे? जिस प्यार के सौदा करने से माया ने आपको खूब पीटा, खूब लगा, पांचों खिलाड़ियों ने फुटबॉल बना के क्या पिटाई किया, अभी वो प्यार मेरे साथ शेयर करो। इसलिए हमें दिल का सच्चा प्यार बाबा की तरफ से ट्रांसफर करना है। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुट जाती है। एक प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर देता है और बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। जब तक हम बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति नहीं करते हैं तब तक ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति नहीं होती है। जब जलता हुआ कोयला मैं हाथ में पकड़ता हूं तो मेरा हाथ फट से जल जाता है। ऐसे बाबा आत्मा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही ट्रांसफर हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। इसलिए वैसा प्यार होता है वैसी बुद्धि रूपी तार हमारी जुट जाती है। याद तीन प्रकार की होती है, याद करना, याद आना और याद सताना। तो बाबा की याद हमें सताए, क्योंकि बाबा से बढ़कर इस दुनिया में प्राप्तियां कराने वाला कोई भी नहीं है। सबसे जास्ती प्राप्तियां कराने वाला केवल बाबा ही है और इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा केवल एक शिव बाबा है। इसलिए बाबा की तरफ दिल का सच्चा प्यार हम ट्रांसफर करते रहे। पांचवी बात और महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। कभी हम ऐसी सेवा की प्रवृत्ति में व्यस्त हो जाते हैं, अगर कोई हमें बैठकर तपस्या करने के लिए कहता है तो हमें बंधन सा लगता है। जैसे सेवा में रुचि होती है वैसे एकांतवासी बनकर बैठने में भी हमारी रुचि, एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। एकाग्रता का कनेक्शन मन और बुद्धि के साथ होता है। तो बुद्धि रूपी नेत्र ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखता है तो मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है। अभी मान लीजिए बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा से थोड़े समय के लिए हट भी जाता है तो हमें चेक करना है उसको और चेंज करना है, बाबा पर बिठाते जाना है। तो लंबे समय तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर, ज्ञान सुदेश बाबा पर एकाग्र होना जरूरी है, तभी ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। सिंपल उदाहरण है, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, उसको मैं सूर्य की रोशनी में जलाना चाहता हूं। 10 दिन से मैंने कड़क धूप में रखा है, नहीं जल रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको जल्दी से जल्दी जलाना चाहता हूं। तो सूर्य की रोशनी में हम कागज के टुकड़े के ऊपर मैग्निफाइंग लेंस पकड़ते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं उस लेंस से जब पास होती हैं तो बहुत प्रखर होती है, शक्तिशाली किरणें होती हैं। ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ उस कागज पर बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती है जिसमें पेपर फट से जल जाता है। ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा ज्ञान सूर्य को देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस जब पास होती है बहुत शक्तिशाली किरणें होती है। तो ऐसे शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती है तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है और उसमें हमारे पुराने संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, जो जन्मों के पाप कर्म होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। अगर लेंस थोड़ा भी हिल जाता है तो भी वो कागज का टुकड़ा नहीं जल पाता है। ऐसे एकाग्रता में थोड़ी सी भी कमी होती है तो भी ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें नहीं होती है, क्योंकि द्वापर युग से हमारी मन और बुद्धि भटकती रही, उसको कंट्रोल में रखना और उस पर अनुशासन पूर्णतया करना ये अभ्यास की बात है। अभ्यास करते 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 ऐसी एकाग्रता की अनुभूति हमें होती है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी योग की अनुभूति संपूर्ण एकाग्रता के साथ हर कल्प की है, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं। कौन से यादगार हैं? गुरु द्रोणाचार्य जी जब अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो गुरु जी ने एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाही। परीक्षा लेने के लिए वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया, पंछी की आंख में जो आईबॉल है, जो काली पुतली है, उस पर आपको तीर मारना है, वो लक्ष्य दिया। फिर गुरुजी ने सहपाठी को बुलाया, एक सहपाठी को आओ इधर बताओ क्या दिखाई दे रहा है। वो कहने लगा आंख भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रहा है, डाल भी दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो काली पतली आंख में पंछी के है वो ही दिखाई दे रहे। उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और पांच वितानर हो गया। तो अर्जुन वगैरह कोई होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन इसी सभा में बैठे हैं और इन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ अभ्यास किया है। ऐसा अभ्यास हमने हर क्लब किया है, केवल उसको हमें रिपीट करना है, दृढ़ता को रखना है कि कुछ भी हो ऐसी एकाग्रता के साथ मैंने आज अमृत वेले या नमाज शाम के समय योग का अभ्यास करना ही, तो अवश्य आपको अनुभव होकर ही रहेगा। क्योंकि सवेरे शाम जब बैठक का योग अभ्यास करते हैं उस समय ऐसा शक्तिशाली योग अभ्यास करना है, और दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते हमें साधारण योगाभ्यास करना है। रूह रिहान या परिस्थिति की अनुभूति हमें करता रहना है, लेकिन जब भी हम बैठक का योग करते हैं ऐसे संपूर्ण योगाग्रता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। तो बाबा बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारे आंखों में बसती है, बाबा से बढ़कर कोई भी हमारा प्यारा नहीं है। जैसे मीरा का सबसे प्यारा कन्हैया था, हमारा भी सबसे प्यारा बाबा ही है। जब बाबा हमारी आंखों में बसता है, तीसरे नेत्र में बस जाता है, तो ऐसी एकाग्रता की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से होती है, और जितना प्यार बढ़ता है तो प्यार के सागर में हम लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जब लीन होते हैं तो आत्मा में जो भी कचरा है उस सागर में समा जाता है। ज्ञान सूर्य में तपते हैं तो आत्मा में जो भी गंदगी है वो ज्ञान सूर्य की तपत में भस्म हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। इस समय की पुकार है, क्योंकि हर रोज हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी पुराने संस्कारों के अंश जागृत हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कभी हल्का फुल्का गुस्सा भी आता है, फीलिंग भी आती है, तो बाबा का नाम बदनाम होने की संभावना होती है। तो इसलिए विकारों के अंश वंश जो आत्मा में हैं, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। मुझ आत्मा में वो गंदगी है या नहीं उसको चेक करना है तो दो बातों से चेक कर सकते हैं, संकल्पों से या अपने स्वप्नों से। जब हमारे मन में हमेशा शक्तिशाली और पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता है तो समझ लो आत्मा से गंदगी समाप्त हो गई है। कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हैं, किसी भी विकार से संबंधित संकल्प चलते हैं, तो मानो वो अंश आत्मा में अभी भी है। दूसरी बात, स्वप्न हमें जरूर पड़ते हैं, लेकिन किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न पड़ता है तो समझ लो वो अंश मुझ आत्मा में अभी भी है। स्वप्न पड़ते हैं संगम युग के बारे में, सेवा के बारे में, बाबा के बारे में, सतयुग के बारे में, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे स्वप्न किसी भी विकारों से संबंधित पड़ना वो हमें बताता है कि अभी अंश विकारों का अभी भी आत्मा में है। जब आत्मा एकदम साफ सुथरे हो जाती है तो हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह आत्मा में चलने लगता है। पवित्र संकल्पों की खुशबुएं इस वायुमंडल में हम फैलाते जाते हैं। आत्मा चैतन्य अगरबत्ती के समान इस वायुमंडल में खुशबुएं फैलाती रहती है और वायुमंडल को भी पवित्र करती रहती है। ये बाबा हमसे सेवा चाहते हैं, तो ऐसी बेहद की सेवा करने के लिए आवश्यकता है ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति को बढ़ाते रहना। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे अमृत वेले हम बैठे हैं। बाबा बहुत ही सुंदर अनुभूति आपको कराएंगे। चले हम सभी योग की गहन अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं निराकार शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्वाला स्वरूप योग की तपस्या के लिए इस देह रूपी कुटिया में विराजमान हूं। स्वयं के स्वरूप को दिव्य चक्षु से बहुत गहराई से देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। इस देह रूपी अंग से एकदम डिटैच हूं। मैं निराकार ज्योति आत्मा तपस्वी शक्तिशाली हूं। शक्तियों की सजीव तरंगें बस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी कुटिया से न्यारा होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम उठा हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। जा रहा हूं और फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं।
कितनी सुंदर है यह परिस्थिति, दिव्य प्रकाश प्रकाश पवित्रता ही पवित्रता है, मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पंच की चमकी ली परिस्ता स्वरूप की ड्रेस धारण करिए। कितनी सुंदर है यह ड्रेस, इतनी हल्की फुल्की ड्रेस है, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता रूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके प्रकृति में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं परिस्ता अपार शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे, बाबा की दृष्टि का मैं परिस्ता आनंद ले रहा हूं, स्वयं में शक्तियां भर रहा हूं। बाप दादा मुझे पर्सनली दृष्टि दे रहे हैं, शक्तियों से भरपूर आत्मा परिस्ता स्वरूप को ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से बढ़ते हुए जा रहे जा रहे। और निराकारी दुनिया में पहुंच गई, इतनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है, चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, मेरा मन वतन मेरे प्राणों की प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, प्रत्योति बहु स्वतरम यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार, बाबा की सुंदरता का आनंद ले, बाबा ज्ञान सूर्य है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली, मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य से पिता को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रहे, ज्ञान सूर्य की अत्यंत शक्तिशाली किरणें बुद्धि रूपी नेत्र से प्रवेश होकर लेजर किरणें की तरह आत्मा बिंदु पर संपूर्ण एकाग्रता के साथ बढ़ रही है, एकाग्रता के साथ बढ़ रही है, प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, योग की ज्वाला धधकने लग रही है, उस योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप वाला भार नहीं बस बाहर है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की रोशनी में तप रही, तपती ही जा रही, ज्ञान सूर्य से कंबाइन हो चुकी हूं, जो मैं बन चुकी हूं, प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, प्यार के सागर के तले में खो चुकी हूं, जो मैं बन चुकी हूं, प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद, स्वतः ही परिवर्तन हो रहा है, मैं शक्तिशाली आत्मा अपार शक्तियां से देख रहे हैं। प्रयत्न करते जाए मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज, दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा कोई रहूं, डूबी रहो, समाइए रहो, इतने विशाल ब्रह्मांड में आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से महामिलन का आनंद ले, परम आनंद में सचमुच मेरे जीवन की सुनहरे पल है, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं, भाग्य विधाता से भाग्य लूट रही, खजाने लूट रही और लुटा रही, वहां मैं वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। शक्ति और सिद्धार्थ पूर्णात्मा निराकारी दुनिया से नाते माया सूक्ष्म है, इस साकारी दुनिया की और पुनः इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी प्रकृति के अकाल तक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुका हूं। बस शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजता के इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को मंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना शक्तियों के सागर शिव पिता ने शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ शक्तिशाली आत्मा पर निरंतर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं।